असली भाव है हम सब एक के हैं। इस सृष्टि का क्रिएटर एक है, सबने उन्हें ईश्वर कहा, प्रभु कहा, गॉड फादर कहा, अल्लाह कहा, एक एक प्रभु को पुकारा है, एक की ओर सबने ध्यान खिंचवाया है, वो एक है। अगर हम सब ये समझ लें कि हम सब उस एक के हैं तो आपस में एकता हो जाएगी।
हम मंदिर में जाएं, मस्जिद में जाएं, गुरुद्वारा में जाएं, हम भजन करें, हम इबादत करें, हम गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करें, शब्द कीर्तन करें, सब में उसी अप्रत्यक्ष सत्ता को अनुभूत करने का उपक्रम है। हमारे बीच हमारे क्रिश्चियन बंधु और उसके प्रतिनिधि के रूप में, उस धर्म के प्रतिनिधि के रूप में अजय मसीह भाई उपस्थित हैं। हम उनसे उनकी जिज्ञासा जानना चाहते हैं।
परम आदरणीय रानी दीदी से यह सवाल करना चाहूंगा कि आज इतना भौतिक साधन रहने के बावजूद हमारे मन में शांति क्यों नहीं है, हम खुश क्यों नहीं है? हमारे सामने सवाल यह है कि क्या हम अपने आप को अब तक खोज पाए हैं? ब्रह्मांड को तो खोज रहे हैं लेकिन अपने आत्मा के स्वरूप को नहीं समझ रहे हैं। अगर ऐसा समझ लिए हुए रहते तो धर्म के नाम पर लोग को जिंदा नहीं जलाया जाता।
अनेक अप्रत्यक्ष को का भी प्रत्यक्षीकरण कर रहे हैं लेकिन हम अपनी आत्मा का प्रत्यक्षीकरण क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि आत्मा और विभिन्न धर्मों के जो प्रवर्तक हुए हैं वे प्रेम और भाईचारा में ही विश्वास करने वाले रहे हैं, लेकिन उससे इतर जो कुछ हो रहा है प्रकृति विरोधी हो रहा है और आत्मा विरोधी हो रहा है, हम अपने को कब ढूंढेंगे?
बहुत अच्छा आपने कहा, क्योंकि ईसा मसीह ने क्षमा का संदेश दिया। आज भी जब किसी को क्षमा करने की बात आती है तो वो बात जरूर उनकी सामने आती है कि उनके अंदर इतनी सामर्थ्य रही, इतनी कल्याण की भावना रही। तो अगर हमारे अंदर प्रेम भाव जागृत हो और शांति की अनुभूति पहले हम स्वयं करें, जो चीज हमारे पास है तब तो दूसरे को दे सकेंगे। तो हमारा ये अनुभव कहता है कि हम पहले अपने आप को आत्मा निश्चय करें, शरीर नहीं, मैं कहने वाली आत्मा है। और आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटी, ओरिजिनल नेचर शांति। शांति कहीं जंगलों में नहीं मिलेगी, कहीं गुफाओं कंदराओं में नहीं मिलेगी। शांति आत्मा के निजी नेचर है, अपना स्वभाव है, वो अपने को आत्मा निश्चय करने से प्राप्त होगी। मनुष्य आज अपने को आत्मा नहीं समझता, शरीर समझता है। ये पांच तत्वों का बना हुआ पुतला ये शरीर मानकर ही चल रहा है, इसीलिए आज इतने भेदभाव हैं। हम आत्मा का अनुभव करें और शांति की अनुभूति करें। आज इतना तनाव है हर व्यक्ति के पास, इतने सुख के साधन जुटा लिए हैं तो भी मनुष्य तनाव ग्रस्त है, कितना डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, मानसिक बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, मन के कारण तन के रोग बढ़ते जा रहे हैं। मिटाने का तरीका क्या है? पहले आत्म अनुभूति करें, शांति की अनुभूति करें। अपने को जैसे ही आत्मा समझेंगे शांति का अनुभव होगा। आत्मा अकेली आई है, अकेले जाना है। अपने कर्मों पर ध्यान दें, अपने विचारों पर ध्यान दें, अपने मन की स्थिति पर ध्यान दें, अपने पास स्टॉक इकट्ठा करें। मनुष्य अशांत क्यों होता है? दूसरों के कर्मों का चिंतन करता है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये ऐसा क्यों करता है। इतना करेक्शन माइंड हो गया है मनुष्य का, हर व्यक्ति के दोष देखता है, हर व्यक्ति का करेक्शन करता है और वो करने से खुद अशांत हो जाता है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है हम स्वदर्शन करें, स्वचिंतन करें, स्वपरिवर्तन करें, स्वयं की स्थिति बनाएं, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो। शांति और प्रेम आत्मा का धर्म है, उसकी अनुभूति करें। वो कहीं बाहर नहीं है, वो मेरा ही गुण है, लेकिन शरीर का गुण नहीं, आत्मा का गुण है। अपने आप को आत्मा निश्चय करें। यहाँ जब हम लोग मेडिटेशन की क्लास कराते हैं, उसमें सभी धर्म के लोग लाभ लेते हैं। यहाँ कोई प्रतिबंध नहीं है कि कोई धर्म का व्यक्ति यहाँ नहीं आ सकता है। हर जाति हर धर्म का यहाँ स्वागत है, क्योंकि यह आध्यात्मिक केंद्र है। यहाँ आत्म अनुभूति कराई जाती है। जब तक हम आत्म अनुभूति नहीं करते, तब तक परमात्मा की याद में मन एकाग्र नहीं होता।
हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, और जैसे ही हम स्वयं को आत्मा समझ लेंगे, हमारे सामने कोई भी मनुष्य मनुष्य से अलग नहीं होगा। मानवीय पद, मानवीय धर्म और मूल्यगत जीवन जीने के लिए आत्म साक्षात्कार और साधना नितांत अनिवार्य है। हम अपने इस्लाम धर्मावलंबी एक युवा भाई से उनका सवाल जानना चाहेंगे। एक युवा धर्मावलंबी क्या सोचता है, उसका द्वंद, उसका दुख, उसकी जिज्ञासा क्या है, हम जानना चाहेंगे नवाब भाई से।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे यहाँ पहली बार आने का बहुत बहुत मौका मिला, इसका सब लोगों को मैं बधाई करता हूँ, सलाम करता हूँ। मेरा इस्लाम एक सच्चा मजहब है, एक प्यारा मजहब है। हम लोग खुदा की इबादत एकदम सच्चे दिल से करते हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह, जब तक मेरे तन में मेरा रूह रहेगा। हम रानी दीदी से ये जानना चाहेंगे, जो हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो उन्हीं के बताए हुए और उनके किरदार और अमल पे हम लोग चल रहे हैं अभी तक। और ये मेरा भी मजहब नहीं बताता कि किसी से उलझना या किसी की मुखालफत करना या किसी को बुरा भला या किसी को उल्टा सीधा कहना, ये मेरा भी मजहब नहीं सिखाता। और हम लोग अभी इतने बड़े हो गए, लेकिन कभी भी हम लोग के उस्ताद भी इस तरह के मतलब कोई उल्टा रास्ता हम लोग को आज तक नहीं बताए।
कि किसी भी धर्म पिता ने अपने धर्म के मानने वालों को बहुत अच्छे उपदेश दिए हैं, बहुत अच्छे रास्ते बताए हैं, समाज को सुख देने की ही बातें सिखाई हैं। अगर हम उसके ऊपर स्थित रहें तो बहुत समाज कल्याण का कार्य हो सकता है। लेकिन उन सब बातों को भूलकर मनुष्य अपने ही अंदर बैठे हुए मनो विकारों के वश होकर के अनेक प्रकार की विकृतियों में आ जाता है। ईर्ष्या, द्वेष, वैर, विरोध के चक्कर में आ जाता है और बदले की भावना उसके अंदर आ जाती है। इसलिए जितना हम आध्यात्मिक चिंतन करेंगे, जितनी अपनी आध्यात्मिक स्थिति बनाएंगे, जितना उस ईश्वर के नजदीक आएंगे, हमारे अंदर उनके गुण, उनकी शक्तियां जो हमारे अंदर आएगी, उसके द्वारा जब हम कार्य करते हैं तो हम समाज को बहुत कुछ दे सकते हैं। क्योंकि सबके दिल में बहुत प्रेम है, बहुत भावना है, बहुत श्रद्धा है। किसी भक्त को देखिए कितना प्रेम और श्रद्धा विश्वास किससे भरा हुआ है, लेकिन क्या उसके व्यवहार में भी उतना श्रेष्ठता है? क्या उसके कर्म में भी इतनी श्रेष्ठता है? आज आवश्यकता इस चीज की है कि आइए, जो कुछ हम जानते हैं, जो कुछ हमें उपदेश मिले हैं, जो कुछ हमने सीखा है, उसे हम करके दिखा दें। हमारे शब्दों में, हमारे ग्रंथ में जो लिखा है उसमें और हमारे कर्म में अंतर ना हो। धर्म लोक किताबों में ना पढ़े, हमारे आचरण में पढ़े। हमारा एक एक संकल्प, वाणी और कर्म धर्म युक्त हो। जैसा धर्म वैसा कर्म कहा जाता है। हमारा कर्म हमारे धर्म अर्थात धारणाओं पर आधारित हो।
जो विभिन्न धर्मों के प्रवर्तक रहे हैं, मगर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संस्थापक, हर क्षण स्मरणीय और प्रेरक व्यक्तित्व, पवित्र व्यक्तित्व, ब्रह्मा बाबा ने एक ऐसी संस्था को विकसित किया जिस संस्था की संचालिका मातृशक्ति ही है। और इन्हीं के हाथ में इस संस्था को देकर इसे विश्व व्यापक स्वरूप प्रदान किया। आज इस धर्म संसद में मातृशक्ति के रूप में हमारी एक बहन उपस्थित है और हम उससे उसकी उत्सुकता पुरुषों के बनाए विभिन्न धर्मों के बीच, जिन्होंने स्त्रियों के लिए भी किसी ने कठोर धर्म, किसी ने त्याज्य धर्म, अर्थात धर्मों के विभिन्न स्वरूप खड़े कर दिए। आखिर एक स्त्री का क्या धर्म हो और स्त्री किस धर्म का अनुसरण करे, उनकी जिज्ञासा होती है। इससे पहले हम उनसे प्रश्न उनका पूछना चाहेंगे।
आज धर्म संसद के माध्यम से आदरणीय दीदी से जानना चाहूंगी कि स्त्री धर्म क्या है और उनकी पद्धति कैसी होनी चाहिए।
ईश्वर ने अपने सारे गुण एक नारी में भर दिए हैं। ईश्वर को लोग क्यों याद करते हैं? कहते हैं दया करो, कृपा करो। तो दया की मूरत, कृपा की मूरत, सहानुभूति की मूरत, त्याग की मूरत, तपस्या की मूरत, करुणामयी, सहानुभूतिमयी, ये सब गुण तो नारी में विराजमान है ही। लेकिन आज नारी भी अपने पद से विचलित हो गई है, वो भी तनावग्रस्त हो गई है, अनेक प्रकार की मनोवृत्तियां दूषित हो गई हैं। आज अपने स्वरूप को पहचानने की जरूरत है कि ईश्वर ने हमारे अंदर बहुत गुण दिए हैं, वो गुण को और जगाना है और उनको सबकी सेवा में लगा देना है। आज सेवा भाव जब जागृत हो जाता है तभी मनुष्य सेवा कर सकता है। जब तक प्रेम भाव नहीं जगे, सेवा भाव नहीं जगे, उस करने के लिए त्याग का भाव नहीं जगे, तब तक कार्य सफल नहीं होता है। भगवान ने इस सृष्टि के कल्याण का कार्य महिलाओं को जिम्मेवारी दी है। अगर एक परिवार से एक नारी चरित्रवान, ज्ञानवान और योग युक्त है तो सारे परिवार के अंदर वो अपना संस्कार डाल देगी। संस्कार अपना दूसरों में डालने की क्षमता नारी में है। कैसा भी व्यक्ति हो, उससे बदले की भावना न रखकर, उसके ऊपर क्षमा भाव, दया भाव रखकर उसको परिवर्तन करने की क्षमता नारी में है। तो पर भगवान जब अपना कार्य करने इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं तब उन्हें सबसे ज्यादा सहयोग महिलाओं का चाहिए, नारी शक्ति का चाहिए। इसलिए हम देखते हैं शिवरात्रि और नवरात्रि दोनों त्योहार रात्रि के नाम से हैं। इसका मतलब है भगवान ने जिस समय कार्य किया उस समय नारी शक्ति से कार्य करवाया, उनको आगे किया। आज ईर्ष्या, द्वेष, वैर, विरोध के चक्र व्यूह में आ गई हैं। उन सब से मुक्त होकर अगर वही शांति का संदेश देने के लिए आ जाए तो सब उस संदेश को प्रैक्टिकल उनके लाइफ में धारण किया हुआ ग्रहण कर सकते हैं और वो स्वरूप दिखा सकते हैं।
धर्म जैसे ही धार्मिकता में परिवर्तित होता है, धार्मिकता स्त्रीवाची हो जाती है और उसी शक्ति से भर जाती है। अध्यात्म पुरुषवाची है, लेकिन जैसे ही आध्यात्मिकता में वह तब्दील होता है वैसे ही उसमें स्त्री शक्ति आ जाती है, अर्थात उसमें प्रेम, करुणा, क्षमा, सहिष्णुता और एक विस्तृति आ जाती है। परमादरणीय दीदी ने स्त्री शक्ति क्या होती है, साक्षात शक्ति स्वरूपा होती है स्त्री। गुरु नानक देव जिन्होंने सिख धर्म का प्रवर्तन ही नहीं किया, उसे करुणा, सेवा, संकल्प, त्याग तमाम सद्गुणों से भरने का भी काम किया और स्वयं वे करुणावतार के रूप में भी दिखते रहे। बल्कि एक प्रसंग भी आता है कि एक बार वे पांव दूसरी दिशा में, एक ऐसी दिशा में रखे हुए थे जहां इबादत स्थल था, किसी ने कहा कि आपका पांव, कहा कि हाँ मेरा पांव उधर कर दो जिधर यह न हो, जहां उनका पांव घुमाए उधर ही इबादत गृह दिखे। उसी पंथ से आते हैं हमारे भाई योगेंद्र सिंह गंभीर जी निरंतर सेवा संकल्प से जुड़े हुए, लेकिन समाज सेवा करते हुए, धार्मिकता को जीते हुए भी, मानव धर्म का निर्वाह करते हुए भी इन्हें भी दुखी होना पड़ता है। समाज में जो वैषम्य है, समाज में जो अपसंस्कृति का वातावरण है, इससे इन्हें भी क्षोभ होता है। धर्म का कितना नियंत्रण उस पर है और धर्म कैसे बिगड़े हुए वातावरण को नियंत्रित करे और सही मार्ग पर मनुष्य को एकता के साथ ऐसा ले चले कि हम विश्व बंधुत्व के महाभाव से समृद्ध होते चले जाएं। भाई योगेंद्र सिंह गंभीर जी, आपकी जिज्ञासा, आपका प्रश्न, आपका द्वंद, आपका दुख, आपकी दुविधा।
वैसे मैं अभी नारी शक्ति की बात चल रही थी और गुरु नानक देव जी का प्रसंग आया, प्रश्न करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। गुरु नानक देव जी ने कहा, सो क्यों मंदा आखिए जित जमे राजान। जिस नारी ने, जिस औरत ने राजाओं महाराजाओं को जन्म दिया, उसको आप बुरा क्यों कहते हैं? ये वो 15वीं शताब्दी की बात है जिसमें नारी को बहुत नीचे दबाने का प्रयास हुआ और उस समय गुरु नानक देव जी ने बात कही। और मेरा प्रश्न एक है, वो ये है कि धर्म और सेवा, ये दो चीजें जरूर हैं। क्रिश्चियनिटी ने भी सेवा को जोड़ा धर्म से, सिख धर्म ने भी जोड़ा सेवा धर्म को सेवा से, लेकिन मुझे बार बार ऐसा प्रतीत होता है, मुझे ज्ञान दें कि धर्म, धार्मिक संस्थाएं का कार्य, धार्मिक संस्थाओं का कार्य धर्म को उद्भाषित करना होना चाहिए, धर्म को आगे बढ़ाना। धर्म लोगों को जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का कदापि नहीं। तो मैं केवल ये जानना चाहता हूं कि क्या धार्मिक संस्थाओं को, विभिन्न धर्मों के लोगों को धार्मिक कार्यों में समय देना चाहिए, धर्म को आगे बढ़ाने में समय, धर्म के प्रचार प्रसार, विचार वाणी उनको प्रसारित करने के लिए आगे आना चाहिए, या सेवा की ओर डूब जाना चाहिए?
धर्म का कार्य ही तो सेवा का कार्य है। धर्म किसी को धर्म युक्त रहना सिखाता है, धर्म धारणा करना सिखाता है, धर्म सत्मार्ग पर चलना सिखाता है, धर्म ईश्वर से प्रेम करना सिखाता है, यही तो सेवा है। लोगों ने सेवा को अलग समझ लिया, किसको खाना खिला देना, किसको कपड़ा बांट देना, किसी को किसका इलाज करा देना, किसका ऑपरेशन करा देना, दवाइयां बांट देना, इसको सेवा खाली समझ लिया है। लेकिन वास्तविक सेवा तो वो है जो आत्म उन्नति कराए, जो आत्मा को पांचों विकारों से मुक्त कराए, जो आत्मा को दुख अशांति से मुक्त कराए, जो सदा सुखी सदा खुश रहना सिखाए और जो ईश्वर से प्रेम करना सिखाए, यही तो धर्म का संदेश है। यही धर्म का कार्य को ही सेवा कार्य मानकर अगर करते हैं तो ये आत्मा के लिए अमर कार्य है, अविनाशी कार्य है। खाना खिलाने के बाद तो 4 घंटे के बाद फिर कोई खाना खिलाने वाला चाहिए, कपड़ा पुराना होने के बाद फिर कोई कपड़ा देने वाला चाहिए, लेकिन धर्म जो धारणा सिखा देता है वो तो अविनाशी हो जाती है, वो तो अमर हो जाती है। उसको धन के पीछे नहीं जाना पड़ता, धर्म उसके पीछे जाता है, धन उसके पीछे जाता है, साधन उसके पीछे पीछे जाते हैं, उसको साधनों के पीछे नहीं जाना पड़ता। लेकिन आज धर्म युक्त आचरण की कमी होने के कारण मनुष्य हर चीज को स्थूल में ले गया है, जो उसकी सूक्ष्मता है वो खत्म हो जाती है। हमारे इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में पहला सब्जेक्ट है ज्ञान का मनन चिंतन, दूसरा सब्जेक्ट है मेडिटेशन, परमात्मा से प्रेम, प्रेम पूर्वक याद, तीसरा सब्जेक्ट है उसको धारण करना, गुणों को धारण करना, हमारे अंदर सरलता मधुरता सहनशीलता गंभीरता दृढ़ता शांति और प्रेम से रहने का तरीका आ जाए, चौथा सब्जेक्ट है सेवा। पहला सब्जेक्ट सेवा नहीं है, और कहीं मीटिंग करते हैं तो निश्चित है कि सेवा की मीटिंग करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ जब मीटिंग होती है तो पहले एक दिन स्व उन्नति, आत्मिक स्थिति, आत्मिक उन्नति, आत्म परिवर्तन, आत्म जागृति, कैसे हो, जहां तक हम पहुंच गए हैं उसे आगे कैसे बढ़े, उसके आगे हमारी स्थिति कैसे बने। हम दूसरों की स्थिति का फिक्र कर रहे हैं, दूसरों को मदद करने का फिक्र कर रहे हैं। पहले अपने को तो मदद करें, पहले अपनी स्थिति तो बनाएं, जहां पहुंच गए वहां संतुष्ट ना हो जाए, और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है, अपने संपूर्णता तक पहुंचना है। ये भी एक तरीका है। इसलिए हम समझते हैं सभी धर्मावलंबियों को, धर्म क्या है, धारणा क्या है, उसकी सेवा क्या है। वो धर्म ही का आचरण ही सेवा है। हम अगर शांत रह सकते हैं परमात्मा के आधार पर, उनकी शक्ति के आधार पर, और हमें देखकर अगर दूसरा क्रोधित व्यक्ति शांत हो जाता है, यही तो सहयोग है, यही तो सेवा है। और हमारे उसके प्रति बदले की भावना न जागृत होके प्रेम और दया भाव जागृत होता है, उसके प्रति रहम का भाव आता है, उसको भी उस क्रोध से मुक्त करने का भाव जागृत आता होता है, यही धर्म सिखाता है।
आत्मज्ञान बिना सब सुना, क्या मथुरा क्या काशी रे। सही अर्थ में जो भी धर्म प्रवर्तक हुए, ईसा मसीह को जिसने शूली दी, ईसा ने उसके लिए भी ईश्वर से प्रार्थना की कि इन्हें बोध नहीं है, हे ईश्वर इन्हें क्षमा करना। भगवान बुद्ध ने अपने शांत चित्त और अपने करुणामय व्यक्तित्व से ही अंगुलीमाल जैसे दस्यु को शांत कर दिया, और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संस्थापक ब्रह्मा बाबा ने भी अपने विराट प्रेम भाव से, अपनी दिव्य दृष्टि से, और एक युग प्रवर्तक की भूमिका में ही नहीं रहकर, बल्कि एक युग दृष्टा की भूमिका में, एक युग निर्माता की भूमिका में, जिस तरह से उन्होंने शांति सेना का गठन किया और भाई बहनों, ऐसे भाई बहनों को सुगठित और आत्मा का साक्षात्कार कराने का काम उन्होंने कराया, बोध कराया, जिनको देखते हुए ही हमारे भीतर एक पवित्र भाव, एक दिव्य भाव, एक सुख, एक शांति और एक दिव्यानंद की अनुभूति सहज ही होती है। हम मार्गदर्शन कार्यक्रम में फिर वरिष्ठ राजयोगिनी रानी दीदी से अपनी जिज्ञासा के समाधान के लिए मिलेंगे अगले एपिसोड में। और आज इस धर्म संसद में आए हुए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जो भी धार्मिक भाई बंधु हमारे आए हैं, उनका हम बहुत स्वागत करते हैं। और सही अर्थ में हम अपने धर्म को किस तरह से धारण करते हुए व्यापक स्तर पर मानवीय धर्म का निर्वाह करें और सद्वृत्तियों को जागृत करें, इन्हीं शब्दों के साथ दीदी के प्रति बहुत आभार। और आप सबके लिए ओम शांति।